पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है, नेगेटिव थिंकिंग क्या होती है, विजन कैसे बनाना है, मोटिवेट कैसे रहना है, ये बातें सुन सुन के कर करके हम सच पूछें तो थक गए हैं। और इन बातों की अहमियत है ज़रूर, लोग इन बातों के ज़रिए से अपने लिए एक लाया अमल तैयार करते हैं और इससे फिर कामयाबी भी हासिल करते हैं। कामयाबी हासिल ना हो सके तो कम अज़ कम उस ज़हनी सतह पर वो रहते हैं जिसमें वो कामयाबी के ना होने को भी हैंडल कर लेते हैं। लेकिन अब मसला स्पेशली हमारे माशरे में बहुत ही नीचे लेवल पर आ गया है और मार्सलोज़ हायरार्की के हिसाब से मसला पहले लेवल पर आ गया है, मसला रोटी का है। वो तमाम लोग जो कुछ इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, फ़लसफियाना बातें करते हैं, कुछ एकेडीमिया की पढ़ी लिखी बातें करते हैं, अमूमन उनका ताल्लुक़ जो है माशरे के उस तबके से है जो अपर क्लास है या मिडिल अपर क्लास है। लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द बसने वाली अक्सरियत है उनका वाकई मसला अब इस तरह की अकली बातें और इस तरह की फ़िलोसॉफ़िकल बातों से ज़्यादा रोज़मर्रा की रोटी पर है। मैं सुबह जब काम पे जाता हूँ तो वहाँ बाहर करीबन हर रोज़ एक दो लोग होते हैं जिन्होंने हाथ में बिजली का बिल पकड़ा होता है कि जी मेहरबानी करके हमारा बिल दे दें, क्योंकि हमारी आमदनी 10,000 रुपया है या 15,000 रुपया है और हमारा बिल जो है वो 9,000 आ गया है, 8,000 आ गया, बताएं हम क्या करें। वो इस बकरीद से पहले हमारा साथी हमारे साथ एक काम करता है, वो सफाई का काम करता है, तो उसने मुझे बातों बातों में ये बताया कि उसकी बीवी ने उसको बहुत शर्मिंदा किया। कहता मेरी बीवी ने मुझे बड़ा शर्मिंदा कहा किया, वो क्रिश्चियन है। कहने लगा मेरी बीवी ने मुझे कहा कि मैं उसका नाम नहीं लेता, कि फ़र्ज़ करें उसका कोई भी नाम है, एक्स नाम है, कि एक्स कभी मुझे गोश्त तो खिलाओ, पिछली दफ़ा गोश्त हमने उस वक्त खाया था जब पिछली मुसलमानों की बकरीद हुई थी, तो कभी गोश्त तो खिलाओ, यानी फरमाइश देखिए आप कि उसके घर की खातून ने क्या फरमाइश की। तो ख़ास तौर पे अब ये जो महंगाई का तूफ़ान आया है और ऊपर से ये जो बिजली का बिल है, पिछले दिनों जो मिनिस्टर ऑफ पावर एंड पावर सप्लाई हैं अवैस लगारी साहब, मैं उनका सुन रहा था कामरान खान के साथ, तो उन्होंने तो वहाँ बैठ के साबित कर दिया कि कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी बिल इंक्रीज़ नहीं हुआ। ये तो पहले से उन्होंने ये साबित किया कि नहीं ये तो ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत थोड़े से इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन हकीकत यह है कि अब लोगों से बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे और लोड शेडिंग के बावजूद जो है, और ये और दूसरी बात यह है कि बिजली का इस्तेमाल करना कोई अय्याशी भी नहीं है पूरे पाकिस्तान में, और जहाँ मैं रहता हूँ ख़ास तौर पर बहावलपुर में और फिर और जो इलाके हैं इस तरह के जनूबी, यहाँ बहुत गर्मी होती है। इस जगह पर एक्चुअली तो एयर कंडीशनर भी जो है वो लग्जरी नहीं है, ज़रूरत है, लेकिन कम अज़ कम पंखा तो होना बहुत ज़रूरी है। तो लोगों से अब अपना पंखा भी जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, टमाटर आज 400, अयूब 400 रुपये, 400 रुपये किलो टमाटर था, और जो फल हैं या जो सब्जियात हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं। तो ऐसी सूरत में अब मैं बहुत गौर करता रहा, सोचता रहा कि मैं क्या बात करूं। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने तमाम बहन भाइयों से ये गुजारिश करूं कि जहाँ ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, देखें सारे का ज़िम्मेदार जो है वो एक सड़क पर झाड़ू देने वाला या एक दफ्तर में काम करने वाला मुलाजिम और या किसी के घर में काम करने वाला या कोई गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर या क्लर्क या छोटा दुकानदार, वो तो आखिर पाकिस्तान के हालात के ख़राब होने का ज़िम्मेदार नहीं है ना। पिछले 30-40 साल से जो लोग इस मुल्क को हुकूमत चला रहे हैं वही ज़िम्मेदार है ना, ये जो हम बाकी लोग तो ज़िम्मेदार नहीं है, इनकी वजह से तो ऐसा नहीं हुआ हुआ ना। तो लेकिन सज़ा सारी की सारी इनको मिल रही है। मेरा नहीं ख्याल कि वो तमाम लोग जो ऊपर ज़िम्मेदार हैं इस मुल्क का निज़ाम चलाने के, क्या आटे के महंगा होने से उनको कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा, और बिजली के महंगे होने से उनको कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। अच्छा, अगर तो उनकी अपनी ज़ाती आमदनी की वजह से फ़र्क ना पड़ रहा हो ना तो फिर तो और बात है, लेकिन जब ये लोगों को पता लगता है कि उनको हुकूमत पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो पाल रहे हैं, तो उनके दिल पर बहुत ना सिर्फ बुरा गुजरता है मगर उनके बारे में एक नफ़रत, उनके बारे में एक गम गुस्सा डेवलप होता है। तो जहाँ मैं एक छोटी सी इस गुफ्तगू में जहाँ ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हुकूमत के चलाने वालों को कि इसको सीरियसली सोचें, अपने अखराजात को कम करें। आप तमाम लोगों को पालने के लिए हमारे हमें बहुत खर्च करना पड़ता है, मेहरबानी करके अपने अखराजात को कम करें। और थोड़ा सा आप वाज़ो नसीहत जो है वो मेरा मौजू है नहीं, और इस तरह की बात करते हुए मुझे थोड़ी सी हया भी आती है कि मतलब हम अपनी कब्र का ख्याल करें, अपनी हशर का ख्याल करें, खुदा के सामने पेश होने से डरें। मैं भी डरूं, मुझे भी इस बात का बहुत खौफ होना चाहिए, और ये तमाम लोग जो साहिब इख्तियार हैं इनको भी बहुत खौफ होना चाहिए इस बात का कि अल्लाह के सामने जब पेश होंगे तो वहाँ तो चर्ब जबानी और वहाँ तो जो है आर्गुमेंटेटिवनेस ये नहीं चलेगी, वहाँ तो अल्लाह के सामने हकीकत बात पहले से ही मालूम होगी, तो जवाब देना पड़ेगा। तो जो जिम्मेदारी है जिन लोगों की, मेहरबानी करके उस सिलसिले में इकदाम कीजिए। ये जो 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 हमारे सरकार, अब वज़ीर आज़म उस दिन कह रहे थे कि 23 अरब रुपया, 23 अरब रुपया की सालाना सरकारी इदारे जो हैं वो नुकसान कर रहे हैं। तो फ़र्ज़ करें अगर मैं एक दुकानदार हूँ और मैं कहता हूँ मेरी दुकान 10 लाख रुपया नुकसान कर रही है, तो उसका मैं जिम्मेदार हूँ। अगर 23 अरब रुपया का नुकसान सरकारी इदारे कर रहे हैं तो इसका इसका जिम्मेदार सरकार है। ये हमारी वज़ीर आला साहिबा पंजाब की वो उस दिन कह रही थी कि ये जो हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को प्राइवेटाइज़ करेंगे, जो सरकारी मुलाजम है ये तो बिल्कुल काम ही नहीं करते और सरकारी इदारों में आके चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, और वर्क्स डिपार्टमेंट को हम इसलिए बंद कर रहे हैं कि यहाँ करप्शन बहुत है। तो क्या ये बात आपको पहले पता नहीं थी कि जब ये बिल पास किए जाते हैं सरकारी इदारों के तो 10% तो बिल्कुल जो सबसे ईमानदार आदमी है वो उसमें से कट लेता है। तो ये बात पहले आपको पता नहीं थी क्या? क्या ये मुमकिन नहीं था जो उस इदारे का हेड है, क्या आप वजीर आजम के इख्तियार में, ये नहीं है वजीर आला के इख्तियार में कि उसको बुला के कहे कि तुम्हारे इदारे के अंदर अहमदपुर में, बहावलपुर में, रहीम यार खां में, यजमान में, लाहौर में, साहिबाल में अगर किसी ने कुछ लिया तो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ये कैसे हो सकता है कि जो उस इदारे का सरबराह है वो ना कर सकता हो? तो इसलिए फिर लोगों को ये गुमान होता है कि ये इसमें सारे के सारे मुलव्वस हैं। अगर मतलब आखिर क्यों है क्यों है करप्शन? आप खुद कहते हैं कि करप्शन है तो क्यों है करप्शन? 23 अरब रुपया अगर सालाना सरकारी इदारे ये कर रहे हैं तो उसका मतलब है सरकार नाअहल है। ठीक है, एक फैक्ट्री जो है, एक आदमी की फैक्ट्री तो कभी नुकसान नहीं करती। फिर मजेदार बात यह है कि जितने लोग हुकूमत का निजाम चला रहे हैं, जिस जिस तरह के इदारे खसारे में हैं उसी तरह के उनके अपने इदारे हैं जाती जो के मुनाफे में हैं, जो के मुसलसल मुनाफे में जा रहे हैं। तो इसकी वजह से ना बहुत मसला हो रहा है। तो इसलिए एक तो ये तो हुकूमत से गुजारिश है, और ये भी एक तरह की ना एक तरह की जेनेरिक किस्म की एक गुजारिश है, लेकिन साथ साथ इस वीडियो बनाने का मकसद जो है वो मैं अपने अपने जैसे भाइयों के साथ और जो बेचारे इसमें पिस रहे हैं उनके साथ गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस चेंजिंग हालात के अंदर आपको भी अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, और आपको अपनी पॉलिसी ये चेंज करनी पड़ेगी कि घर को भी मुल्क की तरह देखें कि हमारे घर का निज़ाम किस तरीके से चल रहा है। अमूमन हमारे यहाँ एक आदमी कमा रहा होता है और सारे खा रहे होते हैं, बाकी सारे के सारे उसके ऊपर डिपेंडेंट तो फैली होते हैं, और एक आदमी बेचारा रगड़े रगड़े में पड़ा हुआ होता है। तो तमाम लोग अपना अपना हिस्सा डालें कमाई के अंदर, और ख़ास तौर पर हम ये समझते हैं कि भाई ख़वातीन का मैं इसमें बिल्कुल इस बात को दिल से कायल हूँ कि अगर घर में मर्द की एक सफिशेंट आमदनी हो तो औरत घर के निज़ाम पर तवज्जो दे, बच्चों की तरबियत पर दे, घर के डिसिप्लिन में तवज्जो दे, तो ये ज़बरदस्त बैलेंस है। मगर इन हालात के अंदर ख़वातीन भी काम करें, और ख़वातीन जो इनकम के मुतल्लिक काम कर सकती हैं, बहुत से काम हैं जो घर बैठे कर सकते हैं, बहुत से ऐसे कारोबार हैं जिनमें घर से निकलना नहीं पड़ता, बहुत से ऐसे कारोबार हैं जो ऑनलाइन हो जाते हैं, उसके लिए बहुत पढ़े लिखा होना भी शर्त नहीं है। हमारे बहुत से दोस्त हैं, उनकी बच्चियाँ, यहाँ बहावलपुर में हमारे एक दोस्त हैं नियाज साहब, तो मुझे बहुत खुशी होती है उनकी बच्चियाँ जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त बिजनेस कर रही हैं, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह बिजनेस कर रही हैं। तो इसी तरीके से मैंने कई देहाती ख़वातीन को देखा है कि वो इस तरह का काम करती हैं, जैसे मुल्तान से वो बहुत सारे सूट ले आती हैं और देहात में अपने घर में ला के बेच देती हैं, और वो उसमें से उनको मुनाफा, हर सूट के अंदर से उनको तकरीबन 800 रुपये बच जाते हैं। तो वो कहते हैं किस दिन ऐसा भी होता है कि हमारे घर में 10-10 सूट भी बिक जाते हैं। तो इसलिए मैं एक तो ये कहता हूँ कि हम सब लोग जो है ना बैठें, इसी तरह जो यंग बच्चे हैं जो मैट्रिक में पढ़ते हैं, बस मैट्रिक के बाद फिर वो अपनी जिम्मेदारियाँ खुद उठाएं। 15 साल के बाद का बच्चा, 8-10वीं जमात का बच्चा 8वीं जमात के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए, 10वीं जमात का बच्चा कोई ना कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप सीखे, फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर छोटे छोटे कोर्सेज अवेलेबल हैं, फ्री अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल हैं, वो हमारे दोस्त इमरान अली दीना हैं, उनका एक चैनल है, वो इमरान अली दीना लिखेंगे तो वो आ जाएगा, मुझे चैनल का नाम भूल गया, तो वो ग्राफिक इस तरह से है, तो आप वहाँ से सीख के ना, वो मुफ्त सिखाते हैं, इस तरह बहुत से लोग और मुफ्त सिखाते हैं, ये हमारे दोस्त हैं जो रेहान अल्लाह वाला, वो उनके जो चैनल पर मुफ्त सिखाते हैं, ये हमारे साथी इरफान मलिक हैं, वो सारे हायर लेवल स्किल्स जो हैं सिखाते हैं, इस तरह बेशुमार लोग हैं, एक नहीं बेशुमार लोग हैं जो सारा करते हैं, या शाम सरवर हैं, ये सब लोग सिखाते हैं, इस तरह की स्किल्स सीखें या खुद ही कोई आइडिया लें। देखें असल चीज़ है आइडिया की, आजकल के दौर में ज़रूरी नहीं है कि आप एक छोटे से गांव में रहते हैं तो आपका स्कोप सिर्फ गांव तक है, गांव में रहने वाला शख्स भी एक ऐसा आइडिया जनरेट कर सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट को एड्रेस कर सकता है, मैं कोई एक ऐसी चीज़ बनाऊं जिसको मैं ऑनलाइन बेच सकता हूं, मैंने फ़र्ज़ करें एक प्रोडक्ट बनाई है जो कि ऑनलाइन बिकने वाली है, और वो फिजिकल प्रोडक्ट भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो कोई चीज़ है जो फैक्ट्री में बनाई हुई है, वो एक आइडिया है, वो किसी तरह की टीचिंग है, किसी तरह की लर्निंग है, और फ़र्ज़ करें वो $1 में बिकती है, तो इस बात का इम्कान है कि अगर वो यूज़फुल हो तो 1,00,000 बंदे उसको ख़रीद लें, और उनके लिए $1 देना कोई मसला ही ना हो, और $1,00,000 बहुत बड़ी रकम होती है अगर उसको पाकिस्तानी रुपयों में, बल्कि अमरीका के अंदर भी $1,00,000 बहुत बड़ी रकम होती है। तो ये मेरी गुजारिश है कि हम घरों के अंदर इस बात को देखें कि हम कैसे अपनी सोर्सेज ऑफ इनकम को हलाल तरीके से बढ़ा सकते हैं ताकि हम इस प्रेशर में से कुछ निकल सकें। दूसरा एक अहम चीज़ जो मैंने देखी है, ख़ासतौर पर आजकल के नौजवानों में बहुत देखी है, तो वो ये है कि हम फजूल खर्ची भी बहुत करते हैं, और हम मुतासर हो जाते हैं वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंज्यूमर सोसाइटी वाले कल्चर से, जिसकी वजह से हम नए ब्रांड को ख़रीदने के चक्रों में होते हैं, यानी एक चीज़ मौजूद है उसका नया ब्रांड आएगा तो हम उसको नए ब्रांड के चक्रों में पड़ जाते हैं। तो ये जो ब्रांड कॉन्शियसनेस है जिसकी वजह से हम फजूल खर्चियाँ करते हैं, इसी तरीके से मैंने घरों में आजकल देखा है कि अमूमन बाहर से खाना मंगवाया जाता है, घर में खाना नहीं पकाया जाता, और इस तरीके से और भी सवारियों के सिलसिले में जिस जगह पर हम पैदल जा सकते हैं, हम वहाँ पैदल जाने की बजाय हमें सवारी ज़रूरी चाहिए, तो इसलिए ये जो छोटे छोटे काम हैं जिसमें पैसे बच सकते हैं, जिसमें हम थोड़ी सी अपने कपड़ों के सिलसिले में, अपनी और ज़रूरियात के सिलसिले में थोड़ी सी उसको हम कंट्रोल कर सकें, और तो इंशाल्लाह अज़ीज़ हम इस फाइनेंशियल चैलेंज को इंशाल्लाह हैंडल कर सकते हैं। तो अभी हर तरफ से ही, दोनों तरफ से ताली बजेगी, उधर से जो है हुकूमती जो लोग हैं, अल्लाह ताला उनको एक अकल दे, अल्लाह ताला उनको एक तरह की जिम्मेदारी का एहसास दे, और दूसरा तौर पे जो रिसिपियंट्स हैं, हाँ हम सारे लोग भी अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, तो इसी तरीके से इस चैलेंज को हैंडल किया जा सकता है। लेकिन अगर हमने इस तरीके से ना किया, दोनों में से दोनों फरीकैन ने ना किया, ख़ास तौर पर ऊपर वाले फरीकैन ने ना, जो हमारे फरीक हैं उन्होंने ना किया, तो खाकम बदहन 100 दफ़ा खाकम बदहन, कि जिस नहज पे मुल्क के हालात जा रहे हैं, इस बात का इम्कान है कि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाएं। प्लीज़ मेहरबानी कीजिए, प्लीज़ ये देखिए कि गरीब आदमी की आह से भी बचिए और गरीब आदमी के गुस्से से भी बचिए। गरीब आदमी के का जब गुस्से में आता है ना, गरीब आदमी जब एंगर में आता है तो वो बहुत खौफनाक एंगर होता है, और वो पूरे मुआशरे के ऊपर उसका बहुत ही शिद्दत से असर पड़ता है। तो ये कुछ दर्दमंदी के साथ कुछ गुजारिशें थी। शुक्रिया।